ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए इस समय कई हताश वीजा आवेदक माइग्रेशन एजेंट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंटों के अनुसार सभी एजेंट्स पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन अक्सर एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। एक पूर्व कांगोल शरणार्थी ब्लाइज इटाबेलो अब एक माइग्रेशन एजेंट बन गए हैं। उनके अनुसार चाहे अंग्रेजी के अच्छे ज्ञान वाले लोग स्वयं वीजा आवेदन जमा करने में सक्षम तो हैं, लेकिन एक पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट से संपर्क करने में अंतर पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि क्या चाहिए और तब जटिलता आती है।
Submit your own application, you don't need a migration agent. Now, if you don't understand the language, even filling the form itself becomes difficult. There's legal requirement. If you don't understand the system, sometimes you don't even know what is required of you. And I think that is where the complexity comes.
Refugee Advance and Camwork Service ya RACS आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर शरण चाहने वालों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, सहायता और प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इसकी प्रमुख सॉलिसिटर और केंद्र प्रबंधक सारा डेल का कहना है कि किसी आवेदन का वीजा इनकार हो जाने तक की प्रक्रिया में वो व्यक्ति संभावित रूप से कई प्रक्रियाओं से गुजर सकता है। इसीलिए वो कहती हैं कि आवश्यक है कि एक शरणार्थी प्रार्थी के पास इस जटिल कानूनी प्रणाली से गुजरने के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व हो।
If the department finds that you are not a refugee or you're not eligible for the visa that you've applied for, then if you are a person that came by boat, that appeal is sent to the Immigration Assessment Authority generally. Otherwise, you can appeal that decision at the Administrative Appeals Tribunal, which would be a second stage. If the AAT or the IAA agree with the department, then your only option is to explore judicial review in the courts. And that could be three levels of courts you could potentially go through in order to appeal that decision.
अब 31 दिसंबर 2019 तक ऑस्ट्रेलिया में 7,249 पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट यानी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट थे, जिनमें से 30% लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं। इन रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंटों को गृह मंत्रालय के ऑफिस ऑफ द माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। माइग्रेशन बिल के हालिया संशोधन का अर्थ है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स को अब किसी को माइग्रेशन सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें एक माइग्रेशन एजेंट का रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट जोहाना नानाटो का कहना है कि अपंजीकृत एजेंट यानी अनरजिस्टर्ड एजेंट ओमारा के नियमों और वियनमों से बाध्य नहीं है। नानाटो का इशारा विदेशी नर्सों के एक समूह के बारे में है, जिसने एक ओवरसीज बेस्ड एजुकेशन कंसल्टेंसी से माइग्रेशन सलाह ली थी। इस बीच अवैध एजेंट भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में नौकरियों की गारंटी देते हैं। डेल, रजिस्टर्ड एजेंट्स द्वारा मांगी जा रही कीमतों और सेवाओं की तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वो कहती हैं कि स्कैमर्स अक्सर सफल वीज़ा परिणामों का वादा करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वीज़ा देने वाले एकमात्र व्यक्ति इमिग्रेशन मंत्री हैं। इटाबेलो के अनुसार स्कैमर्स का एक संकेत ये भी है कि वो या तो बहुत कम कीमत मांगेंगे या अत्यधिक कीमत। तो आवश्यक है कि सबसे पहले ओमारा की वेबसाइट पर ये जांचा जाए कि वो माइग्रेशन एजेंट वहाँ पर रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट विनियमित होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में एक आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हैं।
People don't understand the process involved. When I'm assisting you, I have to sign an agreement with a client. Now, fake migration agent will not, because they're not trying to be legally binded to anybody. So there must be an agreement. They must confirm your instructions in writing and all these sort of things that we abide by the code of conduct and we have to do as registered migration agent. It don't happen when people are not registered.
ननाटो के अनुसार ओमारा अपनी आचार संहिता के अंतर्गत हर साल अपने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के बैंक खातों पर कड़ी नजर रखता है.
A part of the code of conduct is that if I take money from the client, I put it in a client account. I don't touch that until I do the work. We have training every year, our CPDs. We go through all these hoops because we have to be registered. But hey, any person overseas can just give advice, make money out of it, and they're not under the Australian law.
RACS में डेल ने अनैतिक एजेंटों के शिकार लोगों की कई कहानियां सुनी हैं.
They had saved and saved and saved to pay an agent's fees to then discover they were needing to pay more fees or additional fees. And then, of course, that agent won't release that client's documents to them until they've paid those fees. And what is concerning is that for vulnerable people in our community, you can see how they fall into those traps, particularly those seeking asylum here in Australia when the stakes are so high and it literally is a situation of life or death.
डेल का कहना है कि अगर आपको लगता है कि एक पंजीकृत माइग्रेशन एजेंट ने आपकी पर्याप्त सहायता नहीं की है या आपके साथ घोटाला किया है, तो ओमारा पर शिकायतें दर्ज कराना महत्वपूर्ण है. ओमारा की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेशन एजेंट्स के खिलाफ 70% शिकायतें खारिज हो गईं क्योंकि उनके लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे या वो ओमारा के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी. अब ऑफशोर इलीगल एजेंट्स दुर्भाग्य से ऑफिस ऑफ माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं. ननाटो की सलाह है कि यदि आपको अपने स्वयं का वीज़ा आवेदन करना है तो भी एक पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से ही सलाह लें.
Migration law itself changes a lot and it's a bit difficult. It's complicated. It had become more complicated because of the pandemic. So I suggest that even if you still want to do it yourself, try to get advice first, you know, at least to make sure that you're in the right track.